अध्याय तीन, भाषा का उपयोग। भाषा के अनेकविध उपयोग हैं। उसे ठीक से समझने के लिए उन स्थितियों को जान लेना अच्छा होगा जिनसे भाषा का प्रयोग हुआ करता है। भाषा की तीन प्रधान स्थितियां हैं। पहला, व्यक्ति स्वयं। दूसरा, व्यक्ति व्यक्ति। तीसरा, व्यक्ति समाज। पहला, व्यक्ति स्वयं। हमने देखा कि भाषा सामाजिक वस्तु है, अर्थात उसका प्रयोग सामाजिक सहयोग के लिए होता है। किंतु भाषा का एकमात्र सामाजिक पक्ष ही नहीं है, सामाजिक के साथ उसका वैयक्तिक उपयोग भी है। क, भाषा का, या यूं कहें कि भाषा का प्रयोग साधन न होकर साध्य ही हो सकता है, अर्थात भाषण भाषण के आनंद के लिए, बोलना बोलने के लिए। निरुद्देश्य बोलने का भी अपना आनंद है और यह प्रवृत्ति व्यापक रूप में देखी जाती है। बच्चों का निरर्थक जलपन तो प्रसिद्ध ही है, मगर सयाने भी उससे मुक्त नहीं है। बच्चा जब किसी गुड़िया या कुत्ता बिल्ली जैसे पालतू पशुओं से बातें करता है तो उसका सामाजिक पक्ष क्या है? बच्चा अपने आप भी बाबा बाबा या मामा मामा बोलता रहता है। निश्चय ही इसके पीछे सामाजिक सहयोग की कोई भावना नहीं होती है और न वह राजनीति या अर्थनीति की समस्या सुलझाना चाहता है। वह बोलता है बोलने के आनंद के लिए। या संभव है आपसे उसने जो नई ध्वनियां सुनी हो उनकी आवृत्ति या अभ्यास कर रहा हो। सयाने बार बार एक ही ध्वनि का प्रयोग कर बच्चे को भाषा सिखाते हैं और बच्चा जब भोजन और शयन से मुक्त रह होता है तो उन ध्वनियों को दोहराता है। इस आवृत्ति से वह भाषा सीखता है, पर भाषा सीख जाने के बाद भी स्वगत भाषण का क्रम बंद नहीं हो जाता। स्वगत भाषण केवल नाटकों में ही नहीं, जीवन में भी चलता है और संभवतः अधिक चलता है। सयाने भी गानेच्छा एकांत में जग पड़ती है। स्नानागार के अनेक गायकों से आपको परिचय होगा तो स्नानागार में जहाँ किसी की सुनने की संभावना नहीं है, सुर में या बेसुरे बड़ी मस्ती में राग अलापते हैं और जैसे ही किसी के पैरों की आहट मिलती है वैसे ही उनकी तान टूट जाती है। स्वागत भाषण या एकांत संगीत की यह विशेषता है कि वह किसी दूसरे की ताकने या सुनने की संभावना मात्र से बंद हो जाता है। बच्चा कुछ बोल या गा रहा हो और आपकी आंखें उससे मिली नहीं कि वह चुप हो जाता है। यही हालत सयानों की भी है। ख, बहुत बार भय आदि की भावना दूर करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। इस स्थिति में कोई श्रोता नहीं होता। उदाहरणार्थ अंधेरे में निर्जन मार्ग पर जाते हुए जब कभी हृदय में भय का संचार होता है तो मनुष्य जोर से गाने लगता है। भीतर से भयभीत होने पर भी ऊपर से वह निर्भीकता प्रदर्शित करना चाहता है और ऐसा करने के लिए वह गीत भाषा का सहारा लेता है। जाड़े में बहुतों को स्नान के समय आपने जोर जोर से सीताराम सीताराम या कोई मंत्र जपते सुना होगा। उच्च स्वर का यह जप किसी को सुनाने के लिए नहीं, ठंडे जल से स्पर्श से उत्पन्न कष्ट को कम करने का साधन मात्र है। ग, कुछ सोचने या किसी समस्या को सुलझाने के लिए भी स्वगत भाषण चलता है। एकांत में हिसाब करते समय बहुतों को जोर जोर से बोलते आपने सुना होगा, जैसे इन्वर्टेड कामा 5 3 8 3 11 5 16 1 17 का 7, हाथ में रहा 1 2 7 9 3 12 का 2, हाथ में रहा 1 1 4 5 2 7 = 727 इन्वर्टेड कामा पद। इस योग को मन में भी किया जा सकता है, मगर बोलकर करना अधिक सुविधाजनक है। इसी तरह यदि कोई इंजीनियर किसी मकान का नक्शा बना रहा है या लंबाई चौड़ाई ठीक कर रहा है तो वह अक्सर बोलकर वैसा करता है, जैसे इन्वर्टेड कामा यदि कमरे की दीवार 1 फुट और बढ़ा दे तो कमरा बड़ा हो जाता है पर डाइनिंग हॉल और किचन छोटा हो जाएगा। अच्छा, बरामदे की ओर 1 फुट बढ़ चले तो क्या हानि है, मगर तब दरवाजा बगल में पड़ जाता है। इन्वर्टेड कामा बंद। इस तरह काफी देर तक वह अपने उफापोह को उच्च स्वर में व्यक्त करता हुआ नक्शे की रेखाएं खींचता है। एकांत भाषण की यह स्थिति पर्याप्त व्यापक है, जो कवि, कलाकार, दार्शनिक से लेकर साधारण व्यक्ति तक में पाई जाती है। इन कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाषा का प्रयोग सदा सामाजिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए ही नहीं होता। दो, व्यक्ति व्यक्ति को एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भाषिक संबंध प्रायः सामाजिकता के निर्वाह की भावना से प्रेरित होता है। रास्ते में किसी से भेंट होने पर हम पूछ बैठते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा कहिए, कुशल तो हैं, कामा बंद। वस्तुतः उसके कुशल में हमारी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। वह भी उत्तर देता है, हाँ सब आपकी दया से ठीक है, तो उपचार मात्र का पालन करता है। संभव है उस समय उसके मन में कोई उलझन या समस्या, कष्ट या द्वंद्व हो, मगर वह हमसे कहना नहीं चाहता। रहीम की यह सीख, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही रखियो गोय, सुन इठ लई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोय। बहुत बार हमें अपने मन की बात दूसरों से न कहने की बाध्य करती है और उपचार का उत्तम हम उपचार से दे देते हैं। इसी तरह जाने की अनुमति मांगने पर अतिथि का जाना मनसा अभिमत होते हुए भी हम ऊपर से कहते हैं, अरे कल ही तो आए हैं, अभी जाने की क्या जल्दी है, दो चार दिन ठहरिए तो जाइएगा। अनुमति मांग ही जाने की स्वीकृति दे देना उदासीनता का परिचायक माना जाता है। किसी के काम कर देने पर धन्यवाद ज्ञापन, कोई भूल हो जाने पर खेद प्रकाश, किसी अपरिचित से कुछ पूछते समय क्षमा कीजिएगा कि भूमिका के साथ प्रश्न करना सामाजिक शिष्टाचार का अंग मात्र है। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं, किंतु नहीं करने से अशिष्टता व्यक्त होती है। इसीलिए हमें प्रतिदिन हजारों निरर्थक ध्वनियों का उच्चारण करना पड़ता है। उसमें समय और श्रम का अपव्यय भले ही हो, पर शिष्टता के निर्वाह के लिए वह आवश्यक होता है। ख, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भाषिक संपर्क का अवसर सामान्य वार्तालाप के द्वारा भी स्पष्ट होता है। दो व्यक्ति घंटों किसी विषय पर बातचीत करते हैं, जो शुद्धोष्य भी हो सकती है और निरुद्देश्य भी। संभव है वे किसी गूढ़ समस्या पर विचार विमर्श कर रहे हों, या यूं ही समय काटने के लिए गप लड़ा रहे हों। ग, किसी को किसी कार्य के लिए निर्देश देना भी इसी श्रेणी में आ जाता है। उदाहरणार्थ, तुम अभी यह काम कर डालो, तुम आज शाम की गाड़ी से दिल्ली चले जाओ, आदि वाक्य व्यक्ति व्यक्ति की सीमा में ही आते हैं। घ, भाव या विचार व्यक्त करने के लिए, जैसे खीज, क्रोध, असहमति आदि सूचित करने के प्रसंग में भी व्यक्ति का व्यक्ति से भाषिक व्यवहार होता है। किसी की राय जानने के समय भी यही स्थिति रहती है। तीन, व्यक्ति समाज। कहने की आवश्यकता नहीं कि भाषा के उपयोग का सबसे व्यापक क्षेत्र व्यक्ति और समाज के संपर्क से उत्पन्न होता है। मनुष्य का अपने आप से या किसी दूसरे व्यक्ति से भाषा के दृष्टि से जो संबंध है, वह अपेक्षाकृत सीमित है। जिस प्रकार कोई कार्य करने के लिए अपने अंगों में भी समन्वय करने की आवश्यकता होती है, एक पैर पूर्व को चलने लगे और दूसरा पश्चिम को, तो गंतव्य तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। उसी प्रकार सभी व्यक्ति समाज रूपी अंगी के अंग होते हैं और परस्पर समन्वय और संगठन करके ही लोक यात्रा सुगम बनाई जा सकती है। जिस समाज में इस समन्वय और संगठन की कमी होती है, उसमें हर कदम पर बाधा और कठिनाई का अनुभव होता है। सामाजिक दृष्टि से भाषा के चार मुख्य उपयोग हैं। पहला सूचन, दूसरा प्रेरण, तीसरा रसन और चौथा चिंतन। पहला, भाषा का बहुलांश सूचनात्मक होता है। तकनीकी विषय, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि का उद्देश्य किसी न किसी प्रकार की सूचना देना ही है। किन किन तत्वों के मिश्रण से वायु अथवा जल का निर्माण होता है, अशोक ने कब से कब तक राज्य किया है और प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए, भारत का भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा है और कहाँ क्या है, आदि बातें सूचना की ही कोटि में आती हैं। समाचार पत्र मुख्यतः कहाँ क्या हो रहा है, इसी की सूचना देते हैं। उदाहरणार्थ, एक समाचार का यह अंश लीजिए, 3 दिनों तक भीषण युद्ध के बाद जिसकी सिलसिले में बड़ी संख्या में शत्रु हताहत हुए। भारतीय सेनाएं जम्मू सियालकोट क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गई हैं। सैनिक विशेषज्ञतः इस प्रगति को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। उनकी राय है कि यदि इस स्थिति को कायम रखा गया तो भारतीय सेनाएं न केवल शत्रुओं को रसद भेजने वाले सैनिक अड्डों को नष्ट कर सकेंगी, बल्कि शत्रु सेना के भागने का मार्ग भी बंद कर देंगी। यह भाषा भारतीय सेना के सांग्रामिक प्रगति की सूचना मात्र उपस्थित करती है। दो, प्रेरण को भाषा का गत्यात्मक उपयोग कह सकते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जनमत के निर्माण या किसी वस्तु के पक्ष विपक्ष में धारणा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक मैनिफेस्टो, चुनाव के पर्चों, प्रचार विज्ञापन, नेताओं के भाषण आदि इसी कोटि में आते हैं। इसका उद्देश्य सूचना देना नहीं बल्कि जनमत को अपने पक्ष में करना होता है। नारा भी उसी कोटि की चीज है, जैसे सिंगल यूनिटेड कामा, रोजी रोटी को कपड़ा दो नहीं तो गद्दी छोड़ो, इन्वर्टेड कामा बंद। इस नारे का उद्देश्य अल्पवित्त लोगों के असंतोष को उभार कर सरकार पर दबाव डालना है। सन 1930 में 4-5 स्वयंसेवकों का दल झंडा लिए प्रभात फेरी करता था और तड़के सड़कों से गुजरता हुआ वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है आदि नारे लगाता था। इसका लक्ष्य था जनता में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरण उत्पन्न करना। धर्म ग्रंथों में अधिकतर बातें प्रेरणार्थक होती हैं, जैसे सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए आदि विविध विधि निषेध कर वाक्य प्रेरणार्थक ही हैं। किसी वस्तु का भड़कीला विज्ञापन उसमें रुचि और आकर्षण उत्पन्न करने की दृष्टि से किया जाता है। उदाहरणार्थ यह विज्ञापन देखिए, खादी के दाम में भारी कमी। गांधी जयंती के अवसर पर 1 रुपये की सूती खादी की खुदरा बिक्री पर 25 पैसे की छूट। खादी में दाम में भारी कमी देखते ही हम उस विज्ञापन की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और हमारे मन में दाम की इस कमी से खादी खरीदने की इच्छा जाग पड़ती है। राजनीतिक विप्लव, महायुद्ध आदि भाषा के इसी प्रयोग के कारण होते हैं। इस्लाम खतरे में है कि नारे ने मुसलमानों को धर्मांधता को उभार कर भारत के 2 टुकड़ों में विभाजन कर दिया। विभाजन के बाद से पाकिस्तानी नेता धर्म के नाम पर अपने देश की जनता को उभारते रहे और भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध होकर रहा। भाषा के प्रयोग का यह सबसे खतरनाक रूप होता है। इस स्थिति में समाज की विवेक शक्ति कुंठित हो जाती है और वह नेताओं के वाकजाल में फंसकर अकार्य और अनर्थ करने को भी प्रस्तुत हो जाता है। 3, सामाजिक दृष्टि से भाषा का तीसरा उपयोग रसात्मक या आस्वादनात्मक है, जिसमें भाषा का रमणीय पक्ष सामने आता है। रमणीय भाषा का प्रयोग न तो सूचना देने के लिए होता है और न प्रेरणा देने के लिए। उसका मुख्य लक्ष्य है भाव को उद्दीप्त करना। यह ठीक है कि भाव को उद्दीप्त करके भी सूचना दी जा सकती है या किसी कार्य के लिए प्रवृत्त किया जा सकता है, जैसे युद्ध आदि के अवसर पर वीर रस की कविताएं वीर रस की भावना को जगाने की दृष्टि से ही रची जाती हैं, किंतु उसका प्रधान उद्देश्य सौंदर्य बोध ही है। भाषा के इन उपयोगों की परस्पर संकीर्णता का अवकाश नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक की सीमा दूसरे से मिल जाती है। एक कोटि की भाषा का प्रयोग दूसरी कोटि में भी पढ़ जा सकता है, किंतु प्रधानता के आधार पर इनका सीमा भेद स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। संसार की जितनी साहित्यिक रचनाएं हैं वे सब आनंद या आस्वाद के लिए प्रणीत हुई हैं। कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जब प्रसाद कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, श्रद्धा सर्ग। तो इसमें न प्रचार की भावना है और न कोई सूचना देने की, यह शुद्ध सौंदर्य अनुभूति की वस्तु है। भाषा के उपयोग का यह पक्ष भाषा विज्ञान का विषय न होकर काव्यशास्त्र का विषय बन जाता है और इसकी विशेषताओं की चर्चा वहीं होती है। 4, भाषा का अन्यतम सामाजिक उपयोग चिंतन से संबद्ध है। जब हम पहले मन में कोई वैयक्तिक समस्या सुलझाते हैं या अपने अतीत जीवन का सिंहावलोकन करते हैं या सुनहले भविष्य का स्वप्न देखते हैं, तो हमारा यह चिंतन समाज निरपेक्ष होता है, क्योंकि इसका संबंध किसी दूसरे से नहीं स्वयं अपने आप से है। इसके प्रतिकूल धर्म दर्शन अर्थनीति राजनीति आदि का सैद्धांतिक निरूपण समाज सापेक्ष चिंतन के अंतर्गत आएगा, कारण कि उसका संबंध समाज से है। दर्शन राजनीति या अर्थनीति के सिद्धांत दूसरों को अर्थात समाज को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए जाते हैं। एक तो उन सिद्धांतों के बौद्धिक जिज्ञासा की तृप्ति होती है, दूसरे वे दूसरों की चिंतन शक्ति का विकास करने में सहायक होते हैं। न्यायशास्त्र और वेदांत दर्शन न सूचनात्मक है, न प्रेरणात्मक और न रसात्मक। वे चिंतन से प्रसूत हैं और उनका उद्देश्य है दूसरों के चिंतन को प्रभावित करना। इस प्रकार भाषा की तीन स्थितियां व्यक्ति के अपने आप से, व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से और व्यक्ति की समाज से स्पष्ट हो जाती हैं और भाषा की व्यापकता का बोध हो जाता है। भाषा के अभाव में मनुष्य की सामाजिक ही नहीं वैयक्तिक स्थिति भी निरुपयोगी बन जाती है। दंडी ने भाषा के इसी महत्व को ध्यान में रखकर कहा है, इदमंधतः कृत्सनम जायते भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयम् ज्योतिरा संसारम न दीप्यते काव्यादर्श। यदि सृष्टि की आरंभ से भाषा शब्द की उत्पत्ति ज्योति न जलती होती तो यह त्रिभुवन घोर अंधकार में निमग्न हो जाता।